ओम शांति। ज्ञान सरोवर के पावन परिसर में राजयोग के प्रथम सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा भारत देश अपनी प्राचीन योग विद्या के लिए प्रसिद्ध देश है। विदेशी खास भारत में आते हैं योग सीखने के लिए और भारत के योगी भी विदेश जाते हैं योग विद्या का प्रचार करने के लिए। लेकिन क्या हम भारतवासियों की बुद्धि में स्पष्ट हैं कि यथार्थ योग किसे कहते हैं? अक्सर योग के नाम पर शारीरिक आसन प्राणायाम की या इंद्रिय दमन की हठ क्रियाएं हम करते रहते हैं, लेकिन यथार्थ योग किसे कहते हैं? इतना जो विश्व प्रसिद्ध ये प्राचीन योग विद्या है वो केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लक्ष्य से नहीं हो सकती है, जरूर वो यथार्थ योग कोई और है। तो ये राजयोग यहां आप सीखेंगे। प्रथम योग शब्द का अर्थ हम समझ लें कि जैसे वियोग माना अलग हो जाना, सेपरेशन, योग माना मिलन मनाना, कनेक्शन करना। उसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसे योग कहते हैं। तो योग अभ्यास प्रैक्टिकली हम करें उससे पूर्व तीन बातों का ज्ञान बहुत जरूरी है। पहला है योग अभ्यास करने वाले साधक हम स्वयं कौन है। दूसरा है योग का साध्य, हमें कहां मन और बुद्धि एकाग्र करने हैं, जोड़ने हैं। वो परम शक्ति परमात्मा कौन है। और तीसरा है साधना, योग साधना किस विधि से, किस पद्धति से हमें करनी है। तो आज के इस प्रथम सत्र में हम स्वयं को यथार्थ रूप से जानेंगे। हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और कहां हमें जाना है। हर धर्म में इस बात का महत्व है कि नो थाई सेल्फ कहा जाता है, कि खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। हम गाते रहे हैं कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये काव्य कि अंतर मम विकसित करो, वो हमारा आंतरिक स्वरूप कौन सा है। हम अपने बाह्य शारीरिक स्वरूप को जानते हैं, ये जो देखने में आ रहा है वो हमारा शारीरिक स्वरूप है, जो हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। प्रकृति के ये 5 महाभूत हैं, शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ते हैं हम कहते हैं कि 5 तत्वों का बना हुआ शरीर पुनः 5 तत्व में मिल जाता है। मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल जाता है। तो हमें स्पष्ट है कि शरीर तत्वों से बना है, मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटेरियल है। संसार में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ हम इन आंखों से देखते हैं, ये प्रकृति के 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो जैसे ये चीजें जड़ है, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील है, हर चीज धीरे धीरे नई से पुरानी होती है और आखिरकार नाशवंत है, ऐसे शरीर भी तत्वों से बना हुआ है, इसलिए शरीर भी जड़ है, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील है और आखिरकार नाशवंत है। लेकिन मनुष्य आत्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द जब हम कहते हैं, इससे 2 अस्तित्व सिद्ध होते हैं, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग मिलाकर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी के बारे में हम जानते हैं क्योंकि स्थूल है, हम इन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन शरीर के अलावा इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति है जिसको हम बीइंग कहते हैं, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है पर समझ में आती है, अनुभव होती है कि जब तक वो चैतन्य शक्ति होती है हम सोचते हैं, कर्म करते हैं, अनुभव होता है। जैसे ही वो चैतन्य शक्ति निकल जाती है शरीर डेड हो जाता है, रिलेशन समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है हम तुरंत कहने लगते हैं कि भाई अब जल्दी उठाओ, जल्दी निकालो। उस अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति को आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है, जिसको हम सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, साइकी कहते हैं, जिसको हम कॉन्शियंट एनर्जी कहते हैं, लिविंग एंटिटी कहते हैं। सरल शब्दों में हम उसे आत्मा कहते हैं। तो देखिए, मनुष्यात्मा ये शब्द कहने से दो अस्तित्व स्पष्ट हुए, एक पांच तत्वों का बना हुआ मानव शरीर और दूसरी अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति। देखने में शरीर आ रहा है, जैसे भौतिक शक्ति इलेक्ट्रिक पावर भी दिखाई नहीं देता है, परंतु इलेक्ट्रिक पावर ही बल्ब के द्वारा प्रकाश के रूप में, हीटर के द्वारा गर्मी के रूप में, एयर कंडीशनर के द्वारा ठंडी हवा के रूप में अनुभव होती है। इसी प्रकार देखने में शरीर आ रहा है, परंतु हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, विचार करते हैं। ये सोचना, विचार करना चैतन्यता की निशानी है। जड़ चीजें सोच नहीं सकती, हम सोचते हैं। ये सोचना चैतन्यता की निशानी है। हमें इच्छाएं होती है, कोई स्वादिष्ट चीज आप खाते हैं, हमें बार बार खाने की इच्छा होती है, वो किसको होती है? मुख में वो पदार्थ नहीं है, हमने वो चीज खाकर पूरी कर ली है, परंतु जीभ द्वारा लिया हुआ स्वाद फिर लेने की इच्छा किसको होती है? चैतन्य को या जड़? कोई सुंदर दृश्य हम देखते हैं, उस स्थान से हम वापस लौट चुके हैं, अभी इन आंखों के सामने वो दृश्य नहीं है, पर इन आंखों से देखी हुई वो सुंदरता हमें बार बार याद आती है। वो किसको याद आती है? आंखों के सामने वो दृश्य नहीं है, पर आंखों द्वारा देखी हुई सुंदरता का अनुभव फिर पाने की इच्छा, बार बार उसकी याद किसको रहती? हम कर्म करते हैं, जड़ चीजें स्वयं क्रियाशील नहीं होती, हम उसके पीछे एनर्जी लगाते हैं तब वो क्रियाशील होती है। हम कर्म करते हैं, हमें अनुभव होते हैं। इवन जिस ऑर्गन के द्वारा अनुभव नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि मेरा ये ऑर्गन डेड हो गया है। अनुभव चैतन्यता की निशानी। हमें दूसरों के लिए भी सहानुभूति रहती है, हमदर्दी रहती है। अगर किसी के दुख, दर्द, कष्ट पर हमें जरा भी सहानुभूति न हो, हमदर्दी न हो, तो हम ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर दिल है, कठोर दिल है। माना हमदर्दी, सहानुभूति, दया, रहम, प्यार, ये चैतन्यता की निशानी। तो मैं सोचती हूं, मुझे इच्छाएं होती हैं, मुझे स्मृति रहती है, मैं कर्म करती हूं, मुझे अनुभव होता है, मुझे दूसरों के लिए सहानुभूति होती है, इससे सिद्ध है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। आध्यात्मिक ज्ञान का पहला सत्य यही है कि मैं आत्मा हूं। सुनने में ये बात बड़ी सामान्य लगती होंगी, आप सोचते होंगे कि ये हम जानते हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हैं, उसमें भी हम क्या कहते हैं? श्रद्धांजलि में क्या कहते कि उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा की सदगति हो। तो शरीर छोड़कर जाने वाली, चूंकि गई कौन? आत्मा। शरीर तो यहीं पड़ा है, शरीर छोड़कर जाने वाली उस आत्मा के लिए हम कहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले। पर क्या जीते जी शरीर में रहते हम स्वयं को आत्मा समझते हैं? समझते हैं? नहीं। कितने आश्चर्य की बात है कि जीवन भर हम खुद को देह ही समझते रहते। शरीर छोड़कर जाने वाली आत्मा के लिए हम कहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले, पर जीते जी शरीर में रहते हम स्वयं को आत्मा नहीं समझते हैं। इसलिए बल सुनने में ये बात साधारण जानी हुई महसूस हो रही हो, लेकिन ये मूल और मुख्य बात है। आध्यात्मिक ज्ञान का ये प्रथम सत्य है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं और मेरा ग्रामेटिकली भी अलग अलग है। मेरा मकान मीन्स मैं मकान नहीं। अक्सर हम कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, भाई मेरे पांव थक गए हैं, मेरा हाथ कमजोर है। मीन्स मैं हाथ नहीं हूं, मैं पांव नहीं हूं, मैं सिर नहीं हूं, मैं पेट नहीं हूं, मीन्स मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। इसलिए आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती हैं, महसूस होता है कि कोई एनर्जी चली गई। क्या चला गया, कैसा चला गया, दिखाई नहीं देता है। आत्मा अति सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म आकार किसको कहेंगे? बिंदु को कहेंगे ना, पॉइंट को कहेंगे, न कि ट्रायंगल, न कि स्क्वायर। अति सूक्ष्म, स्मॉलेस्ट फिगर, पॉइंट को कहेंगे। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है। हमें स्पष्ट रहे कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को चेक करेंगे, जीवन भर रॉन्ग कॉन्शियसनेस में ही हम जीते रहे हैं। हमारी कॉन्शियसनेस में यही है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। परंतु सत्य ये है कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मेल बॉडी फीमेल बॉडी कहा जाता है। मैं स्त्री शरीर या पुरुष शरीर से अलग चैतन्य शक्ति हूं। हम समझ सकते हैं कि शरीर एक मोटर के समान है, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति ड्राइवर के समान हूं। एक ड्राइवर दिन रात मोटर चलाता है, लेकिन वो अपने आप को मोटर नहीं समझता है। उससे क्लैरिटी है कि मोटर अलग है, मैं ड्राइवर मोटर से अलग हूं। इस प्रकार हमारी कॉन्शियसनेस में भी स्पष्ट हो कि शरीर अलग है, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति इस शरीर से अलग हूं। भल हर क्षण हम शरीर द्वारा कर्म करते, हम इन आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, मस्तक द्वारा सोचते हैं, पर सोचने वाली, देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अलग हूं। शरीर एक मकान के समान है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूं। जैसे इस हॉल में हम बैठे हैं, हमें स्पष्ट है कि हॉल अलग है, हम अलग हैं। इस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आपको स्पष्ट है कि कुर्सी अलग है और आप अलग हैं। अगर आप कुर्सी से अटैच हो जाएं और कुर्सी सहित उठकर जाना चाहे, चलना चाहे, तो इजी होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। जीवन मुश्किल इसलिए हुआ है कि हम देह से अटैच हो गए हैं। जैसे ही हम ये सत्य समझते हैं कि शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूं, पर मैं आत्मा इस देह से अलग हूं। जैसे ही ये डिटैचमेंट बुद्धि में रहता है, हम अपने जीवन को सहज और हल्का महसूस कर सकते हैं। जो जिम्मेवारियां, जो प्रवृत्ति, जो रिलेशन बॉडी कॉन्शियस होकर हम निभाते हैं और हम टेंस हो जाते हैं, अगर वही प्रवृत्ति जीवन, परिवार, गृहस्थ हम इस डिटैचमेंट से संभालते हैं तो हम इजी और लाइट रह सकते हैं। शरीर एक वस्त्र के समान है, मैं आत्मा इसको धारण करने वाली इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर के समान है। गीता में भी आत्मा के लिए ये दो शब्द यूज किए गए हैं। शरीर को रथ कहा गया है, आत्मा को रथ पर सवार रथी कहा गया है। रथी और देही, रथ माना शरीर, रथी माना आत्मा, देह माना शरीर, देही माना आत्मा। इसलिए जब कोई डेड बॉडी को उठाकर ले जाते हैं, हम कहते हैं अरथी चली, फलाने की अरथी उठी। अरथी मीन्स जिसमें रथी नहीं है, उस डेड बॉडी को अर्थी कहा जाता है। शरीर एक पिंजर के समान है, आत्मा को पंछी कहते हैं। इसलिए राजयोग का प्रथम अभ्यास है खुद को शरीर से अलग आत्मा महसूस करना। जो बॉडी कॉन्शियस हम बन गए हैं, क्योंकि हम खुद को शरीर ही समझ रहे हैं, शरीर भान में जी रहे हैं, इसलिए हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं। उस बॉडी कॉन्शियस स्टेट से ही हम हर कर्म कर रहे हैं, लेकिन अब हमने ये सत्य समझा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, चैतन्य शक्ति है, शरीर जड़ है, तत्वों से बना है। तो ये सोल कॉन्शियसनेस डेवलप करना, अपने वास्तविक अविनाशी आत्मा स्वरूप में स्थित रहना, ये राजयोग की पहली प्रैक्टिस है। इसलिए राजयोग में अक्सर योगी बनने की बात जब आती है तो लोग सोचते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं। योगी बनना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, है ना? दुनिया से दूर कहीं शांत एकांत में जाएं तो योग लग सकता है, परंतु राजयोग हमें ये सिखाता है कि हमें दुनिया, संबंध, जिम्मेवारियां, प्रवृत्ति नहीं छोड़नी है। दुनिया को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, देहभान को मिटाने की आवश्यकता है। हमें बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करने की आवश्यकता है। और अब तक भक्ति में इस बॉडी कॉन्शियसनेस को मिटाने के लिए हम अनेक प्रकार के हट और दमन की क्रियाएं करते रहे। आप देखते हैं कि कठिन आसन प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं, कई आंख बंद करके परमात्मा को याद करने का योग अभ्यास करते हैं, कोई उपवास करते हैं, कोई मौन कर लेते हैं। हम इंद्रियों का दमन करते हैं कि देहभान समाप्त हो जाए, मन इंद्रिय रसों में स्वादों में न जाए, उसके लिए हम देह का दमन करते हैं। लेकिन राजयोग में कोई हठ दमन की बात नहीं है। राजयोग में सिंपल अभ्यास है कि अगर हमें बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, कर्मेंद्रियों के विषयी आकर्षणों से मुक्त होना है, तो सिंपल अभ्यास है खुद को शरीर से अलग आत्मा समझना। इसलिए आत्म चिंतन राजयोग का पहला अभ्यास है। अब हम ये समझेंगे कि आत्मा माना क्या है। शरीर माना, हमें स्पष्ट है कि शरीर माना पांच कर्मेंद्रिया, हाथ पांव जिसको हम स्पर्शेंद्रिय कहते हैं, आंख नाक कान मुख मिलाकर शरीर कहा जाता है। तो जैसे शरीर माना पांच कर्मेंद्रिया, ऐसे आत्मा माना क्या, आत्मा किसको कहा जाता है। तो आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं, शरीर की पांच कर्मेंद्रियां हैं, आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं। पहली शक्ति है मन, और मन शब्द से आप सभी परिचित हैं। अक्सर हम कहते हैं कि आज मन लग नहीं रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है। अक्सर भक्ति में कहते हैं कि हम ईश्वर की याद में बैठते हैं पर मन भटक जाता है, कहते हैं ना। अब मन किसको कहते हैं, मन माना क्या। जब हम कहते हैं कि मेरा मन भटक रहा है, इसका अर्थ क्या है। मन कोई फिजिकल चीज तो नहीं है जो निकल कर भटकती है। जब आप कहते हैं कि मन भटकता है, मीन्स क्या होता है, क्या होता है,
कर्मेंद्रियों का बदलाव, विचार चेंज होता है।
विचार बैठे हैं कोई एक सब्जेक्ट को सोचने के लिए, पर अनेकानेक और विचार आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि मन भटक रहा है। तो सिंपल बात है, आत्मा की संकल्प शक्ति, आत्मा की विचार शक्ति, मनन शक्ति को मन कहा जाता है। इसलिए मन कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं, और मन का कार्य है सोचना, विचार उत्पन्न करना। इसलिए हम पहली बात ये समझ लें कि मन को विचार शून्य नहीं कर सकते। मन का कार्य ही सोचना है, इसलिए विचार ही न आवे ये नहीं हो सकता है। हाँ, हम विचारों की दिशा को बदल सकते हैं, चिंतन की दिशा को बदल सकते हैं। अगर हम व्यर्थ और नकारात्मक सोचते रहते हैं तो हम उसको बदल सकते हैं कि जो जरूरी है वो हम सोचे या हम शुभ सोचे, श्रेष्ठ सोचे। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं और मन का कार्य है सोचना। अब आप देखिए, अब तक हम बॉडी कॉन्शियस रहे इसलिए हमने मन का अधिक उपयोग कौन से चिंतन में किया? अक्सर कौन सी बातें हम सोचते रहते हैं? अपने मन को ऑब्जर्व करिए, अक्सर कौन सी बातें हम सोचते रहते हैं? वही नौकरी, धंधा, घर, कारोबार, समाज, संसार, तेरी मेरी, इसकी उसकी, वही बातें हम सोचते रहते हैं। इसलिए वही विचार बार बार हमें आते रहते, क्योंकि हमने अब तक मन का अधिक उपयोग शरीर चिंतन, संसार चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में ही किया है। इसलिए वही विचार हमें बार बार आते। अब हमें मन का उपयोग स्वचिंतन, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में करना है। ये परिवर्तन हमें करना है। बताया ना, चिंतन को खत्म नहीं कर सकते, मन को शून्य नहीं बना सकते, पर हम चिंतन की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि हमें मन को मारना नहीं है, मन को सुधारना है। हमें मन का हठ क्रियाओं से दमन नहीं करना है, परंतु मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाकर मन को सुमन, श्रेष्ठ मन बनाना है। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास आत्मचिंतन है। अब विचार अनेक आते हैं। अभी एक मिनट मैं आपको साइलेंस में बिठाऊं, आपको मन में अनेक विचार आएंगे कि भाई ये क्लास पूरा होगा, हम नाश्ता करने जाएंगे, हम चाय पिएंगे, हम इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। अनेक विचार मन में आ सकते हैं, पर सभी विचार उसी क्षण कर्म में नहीं आते। आप निर्णय करते हैं कि अभी हम ज्ञान सुनते हैं, फिर हम ये करेंगे। मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। आत्मा की निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि निर्णय करती है, मन अनेक बात सोचता है, बुद्धि अंडरस्टैंड करती है, चूज करती है, सिलेक्ट करती है। आपके सामने पांच ऑप्शन है, बुद्धि एक चूज करते हैं। तो आत्मा की निर्णय शक्ति को, समझ शक्ति को बुद्धि कहा जाता है, विजडम कहा जाता है। लेकिन आज इसलिए कहते हैं कि मन अगर घोड़े के समान चंचल है तो बुद्धि उसकी लगाम है। लेकिन आज बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। हम निर्णय करते हैं कि हम शांति से काम करेंगे, पर फिर हम क्या कहते हैं, क्या करें, स्वभाव ऐसा है, गुस्सा आ जाता है। हम उस निर्णय अनुसार चल नहीं पाते क्योंकि बुद्धि पतित बन गई है, कमजोर बन गई। इसलिए हम कहते भी हैं कि बुद्धि भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट संसार हो गया, पर पहले, सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, विवेक नष्ट होता है, फिर व्यक्ति हर प्रकार से पतन को प्राप्त होता है। इसलिए अगर हमें बुद्धि को शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य बनाना है तो आवश्यक है बुद्धि को उस परमात्मा से जोड़ना जो सदा पावन है, ऑलमाइटी है, ताकि उनकी याद से बुद्धि शुद्ध और शक्तिशाली बने। इसलिए राजयोग में हम अपना बुद्धि योग उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़ते हैं ताकि बुद्धि प्यूरिफाई हो, एम्पावर हो, डिविनाइज। और ये अनुभव हम सबको है, इसलिए हम प्रार्थना में गाते भी हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमति दे भगवान, कहते हैं ना, जरूर परमात्मा की याद से बुद्धि हमारी कभी शुद्ध सत्य हुई है तब तो हम गाते हैं। कोई सही बात अनेकों के समझाने के बाद भी व्यक्ति नहीं समझता है तो आखिर हम क्या कहते हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। इसलिए बुद्धि योग, बुद्धि का फोकस परमात्मा के प्रति करना आवश्यक है। और इस प्रकार बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, और हर कर्म का एक सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, पड़ता है। हम कोई भी कर्म करें, अच्छे करें या बुरे करें, खुलेआम करें या गुफा में छिप कर करें, पर हम जो कर्म करते हैं उनका सूक्ष्म प्रभाव मुझ करने वाली आत्मा पर जरूर पड़ता है। कर्म के प्रभाव को ही स्वभाव संस्कार कहते हैं। कर्म के प्रभाव को ही स्वभाव संस्कार कहते हैं। हम एक बार, दस बार, बीस बार, चालीस बार गुस्सा करते रहते हैं, हमारा स्वभाव क्रोधी बनता जाता है। व्यक्ति दो बार, चार बार, दस बार झूठ बोलता है, उसको झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। छोटी 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 चीजों की चोरी करते करते व्यक्ति बड़ा पक्का चोर बन जाता है। कर्म ही संस्कार बनते हैं, और हम सब जानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है, वो और कुछ भी साथ नहीं ले जाती है, लेकिन जीवन भर किए हुए कर्मों का प्रभाव संस्कार के रूप में आत्मा में संचित होता है, और आत्मा संस्कार को साथ लेकर जाती है। इसलिए जैसे संस्कार, ऐसे परिवार में, ऐसी जीवन स्थिति, ऐसी गति उससे प्राप्त होती है। हम कर्म करते हैं तब ध्यान नहीं देते हैं, जब कर्म फल भोगते हैं तब सोचने बैठते हैं कि मुझे इतनी भोगना क्यों आती है, मेरे नसीब में ही ऐसा क्यों लिखा है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम भूल जाते हैं कि हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है, पर जब हम करते हैं तब अटेंशन नहीं देते। हम हरेक अपने जीवन को ऑब्जर्व करें, हम घंटों व्यर्थ सोचते रहते हैं, कितना मन में कुड़ते रहते हैं, क्या क्या सोचते हैं मन में, हम घंटों व्यर्थ नकारात्मक सोचते रहते हैं। हम घंटों व्यर्थ तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, जो बोलकर, जो बातें करके हम प्रैक्टिकल कुछ करते नहीं हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वेस्ट, व्यर्थ ही कहेंगे। हम घंटों व्यर्थ कर्मों में लगे रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि इनका आत्मा में प्रभाव संचित हो रहा है। इसलिए हम अपने संस्कारों को देखें, हम हरेक अपने संस्कारों को देखें, इससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हम अपने पूर्व जीवन में किन कर्मों में लगे रहे हैं। हम दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी रिमार्क्स देते हैं कि फलाना बहुत अभिमानी है, बहुत लोभी है, बड़ा प्रपंची है, बहुत गुस्सेल है। दूसरों के लिए तो हम रिमार्क्स देते हैं, पर हम अपने आप को महसूस करें कि हमारे अपने स्वभाव संस्कार कैसे बन गए। आज हरेक आत्मा, हम सभी आत्माएं कम या ज्यादा मात्रा में हरेक दुखी, अशांत, पतित, तमोप्रधान बन गए हैं। कोई काम के वश, कोई क्रोध के वश, कोई लोभ के वश, कोई अभिमान के वश है। पर आपस में झूठा अभिमान होने के कारण हम महसूस नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। अक्सर हम क्या कहते हैं, दुनिया खराब हो गई, हम खराब हो गए, कोई नहीं कहते। लेकिन जब हम ईश्वर को याद करते हैं, पवित्र देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, कोई महान आत्माओं से मिलते हैं, हम अपने आप को महसूस करते हैं। इसलिए आरती में, भजनों में, प्रार्थना में हम गाते हैं, स्वीकार करते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, गाते हैं कि नहीं आरती में, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, मैं पापी नीच कपटी हूं, मो सम कुटिलन कोई। ये हम आरती में, भजन में, प्रार्थना में स्वीकार करते हैं। अगर हमें अपने संस्कार को, आदतों को, क्योंकि संस्कार को ही हम हैबिट्स, टेंडेंसी, सबकॉन्शियस कहते हैं। इसलिए अगर हमें संस्कारों को बदलना है, हमें अपने कर्मों को, व्यवहार को बदलना चाहिए। और अगर हमें अपने कर्म व्यवहार को, बिहेवियर को चेंज करना है, हमें अपने चिंतन को बदलना चाहिए, हमें अपने विचारों को बदलना चाहिए, क्योंकि विचार ही कर्म का बीज है, कर्म ही संस्कार बनते हैं। अगेन, जैसे संस्कार ऐसे ही विचार आते रहते हैं। इसलिए चिंतन को बदलना बहुत जरूरी। आज हम सभी आत्माएं पतित, दुखी, अशांत, तमोप्रधान बन चुकी हैं। पर एक और सत्य यहां हमें समझना है कि हम सभी आत्माएं दुखी, अशांत, पतित बन गए हैं, मींस हम ओरिजिनली पतित नहीं हैं। हम कहते हैं मैं तो बहुत दुखी हो गया, मींस मैं था नहीं, हो गया। ओरिजिनली हरेक आत्मा शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। हरेक आत्मा की ओरिजिनल नेचर ये है। इसलिए हरेक को जीवन में शांति चाहिए या शांति चाहिए, क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप है। व्यक्ति गुस्सा करके भी आखिर शांत हो जाता है। इसलिए हम कहते भी है कि अब मिजाज शांत हुआ, अब हम आपसे बात करें। हम कहते भी हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मीन्स आता है और जाता है। आखिर क्या रहता है? शांति। हमारी ओरिजिनल नेचर शांति है। इसलिए अब हम ये स्मृति रखेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। अगर आप ये सोचेंगे, ये मानेंगे, ये बोलेंगे कि मैं कहता हूं ना मेरा स्वभाव गुस्सेल है, मैं कहता हूं ना मुझे गुस्सा आ जाता है, तो आप गुस्सा ही करते रहेंगे। अब आप ये सोचें, ये समझें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, मुझे जीवन में शांति चाहिए क्योंकि मैं ओरिजिनली शांत हूं। यहां जो ओम शांति शब्द आप बार बार सुनते हैं, उसका अर्थ यही है कि ओम मीन्स मैं आत्मा शांत स्वरूप। हमें हर कार्य शांति से शुरू करना है, शांति से समाप्त करना है। हमें जीवन में सुख चाहिए, न कि दुख। दुख के दिन जल्दी जल्दी पूरा करना चाहते हैं, सुख के हर क्षण एंजॉय करना चाहते हैं। हम दुख में भी सुख को ढूंढते हैं क्योंकि आत्मा ओरिजिनली सुख स्वरूप है। हमें सब प्यार करें वो अच्छा लगता है, कोई हमारी घृणा करे, नफरत करे, हमारा तिरस्कार करे, इवन हमें कोई निग्लेक्ट करे, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। इसलिए शरीर से कोई बच्चा है, युवा है या बूढ़ा है, हर आत्मा को प्यार चाहिए। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। हमें सब खुशी आनंद में रहे वो अच्छा लगता है, कोई उदास, निराश, हताश बैठे रहे वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम उनको बार बार खुशी में लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। ये हमारी ओरिजिनल नेचर है, ये हमारे असली गुणधर्म है। हमें स्वच्छता अच्छी लगती है, गंदगी नहीं। हमें पवित्रता अच्छी लगती है, विषय वासना नहीं। हमें सचरित्रवान अच्छे लगते हैं, बदचलन वाले नहीं। क्यों? क्योंकि हरेक आत्मा ओरिजिनली सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है। हम सदा ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं, अज्ञान मिटाना चाहते हैं। हमें हर बात जानना, समझना, सीखना अच्छा लगता है क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हमें शक्तिशाली लोग अच्छे लगते हैं, हिम्मत साहस वाले लोग अच्छे लगते हैं, हमें कमजोर, कायर, ढीले अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि आत्मा स्वयं शक्ति है। ये है हमारी ओरिजिनल 7 क्वालिटीज। पर जब हम अपने आत्मा स्वरूप को भूल जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं, तो हमारे इन गुणों में विकृति आ जाती है, जिसे हम विकार कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं। ये विकार है, ये हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है। पानी का असली गुण शीतलता है, पर वही पानी अग्नि पर रखो वो गर्म हो जाता है, उबलने लगता है। अग्नि के संग से हटा दो, फिर से धीरे धीरे शीतल हो जाता है, क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी शीतलता है। हर आत्मा की ओरिजिनलिटी ये है। पर जब हम बॉडी कॉन्शियस बनते हैं तो विशियस बन जाते हैं। जैसे ही हम देहभान से डिटैच होते हैं, सोल कॉन्शियस बनते हैं, ये क्वालिटीज हमारे अंदर से ही इमर्ज होने लगती हैं। इसलिए शांति जंगलों में नहीं है। मैं आत्मा ही शांत स्वरूप, सुख साधनों में नहीं है। इन सभी साधनों का सुख भी तब महसूस होता है जब मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। अगर मुझे सुख चैन नहीं है तो अपार वैभव महल में भी सुख नहीं लगता है। आनंद पिक्चरों में, होटलों में नहीं है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। अगर मुझे खुशी नहीं है, कितनी भी बड़ी पिकनिक पार्टी महफिल करो, मुझे मजा नहीं आता है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप। हम कह सकते हैं कि शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति मुझ आत्मा में ही समाया हुआ है। इसलिए कहते हैं, बाहर नहीं भटकना है, भीतर जाना है। भीतर जाना मीन्स सोल कॉन्शियस बनना है। और लास्ट बात, किस प्रकार हम आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्मफल भोगते हैं। इसलिए अभी जहां हम बैठे हैं, जीवन जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्मफल भोग रहे हैं, इन आंखों से जो संसार दिखाई दे रहा है उसे साकार मनुष्य लोग कहते हैं। ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, ये फिजिकल वर्ल्ड है। प्रकृति के 5 तत्वों से बनी हुई ये दुनिया है। इसलिए आत्मा इस दुनिया में आकर शरीर धारण करते है। इसलिए हम कहते हैं संसार कर्म क्षेत्र है। ये वर्क प्लेस है, ये घर नहीं है, ये घर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं संसार मुसाफिर खाना है, जीवन यात्रा कहते हैं, आत्मा को मुसाफिर कहा जाता है। मुसाफिर कहते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, ये आत्मा मुसाफिर को कहा जाता है। हम कहते हैं ये वर्ल्ड ड्रामा है, हम इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर्स हैं, शरीर हमारी ड्रेस है, वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं, पर हम ये रोल्स नहीं हैं जो प्ले कर रहे हैं, हम ये ड्रेस नहीं हैं, हम आत्मा एक्टर हैं। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ते हैं, वैसे भूल जाते हैं, पर जब कोई शरीर छोड़ते हैं उस समय याद आता है, और हम एक दो को याद कराते हैं कि देखो अकेले आए हैं, अकेले ज्यादा है, हा? सब कुछ छोड़ के चला गया, ऐसे कहते हैं ना, पर हम कहां से आए हैं और कहां हमें जाना है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम आत्माओं का असली घर इस दुनिया से दूर, पांच तत्व से भी पार, एक और अति सूक्ष्म छठवां अखंड लाल ज्योति तत्व जिसे ब्रह्म तत्व कहते हैं, हम उस ब्रह्मलोक परलोक के निवासी हैं। इसलिए आलोक और परलोक कहते हैं, पांच तत्व से पार प्रकृति का छठवां अखंड लाल ज्योति तत्व है जिसे ब्रह्म तत्व कहते हैं, हम आत्माएं उस ब्रह्म तत्व की निवासी है। हमारा असली घर परम धाम है, जिसको हम शांति धाम निर्वाण धाम कहते हैं, जहां वाणी नहीं है, निर्वाण वाणी नहीं है, साइलेंस है, क्योंकि आत्मा वहां शरीर के बंधन से मुक्त है, वहां प्रकृति नहीं, शरीर नहीं, कर्म नहीं, हलचल नहीं, आवाज नहीं, वो शांति की दुनिया है, वहां हर एक आत्मा अपने ओरिजिनल ज्योति बिंदु स्वरूप में साइलेंस स्टेज में है, क्योंकि फिजिकल ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए आत्मा अपनी मर्ज स्टेज में, वहां से हम आत्माएं इस फिजिकल वर्ल्ड में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं और कर्म फल भोगते हैं। इसलिए हरेक को जीवन में कभी न कभी, जाने अनजाने हरेक को ऊपर जाने की इच्छा होती है, होती है हाँ? नहीं होती, क्योंकि आप इतने अटैच हो गए हैं या हाँ? हम इस दुनिया से अटैच हो गए हैं, इसलिए अपने घर को भूल गए हैं। हाँ, पर जब कोई दुख आता है, अपना महसूस नहीं होता है, तब हर कोई सोचता है कि इससे तो चले जाए। हमारा असली घर वो है। ये दुनिया हमारे लिए कर्म क्षेत्र है, इसलिए इस दुनिया में रहते हुए ये सत्य हम याद रखें कि ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, ये घर नहीं है। तो हम इस दुनिया में रहते भी डिटैच, अनासक्त, न्यारे, अलिप्त रह सकते हैं। और इस शरीर में रहते हुए और हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हुए भी अगर ये सत्य स्मृति में रहे कि मैं आत्मा हूं, तो इस देह में रहते हुए भी और हर क्षण कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी हम सोल कॉन्शियस रह सकते हैं। तो ये है हमारा सही परिचय कि हम आत्मा हैं। और राजयोग का पहला अभ्यास आत्मा चिंतन है। हम 5 मिनट स्व चिंतन का अभ्यास करेंगे। पहले कुछ कहना है? प्रैक्टिस कर ले। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, कमर सीधी रखें, भले कुर्सी का सपोर्ट लेना है ले, लेकिन स्ट्रेट बैठे। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग हाथ में गोद में न रखें, साइड में रख दें। हमें साइलेंस में रहते हुए मन ही मन स्वचिंतन का अभ्यास करना है। आंखें नेचुरल खुली रहे। आप बंद करके बैठेंगे तो क्या होगा? हाँ, सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। इसलिए आंखें नेचुरल खुली रहने दें। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखेंगे। मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। आत्मा मस्तक में स्थित होकर बॉडी को कंट्रोल करती है, इसलिए भक्ति में हम तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं, ये आत्मस्मृति की निशानी है। यहां हम तिलक नहीं करते हैं, खुद को आत्मा समझते हैं और हरेक को आत्मा दृष्टि से देखते हैं। हम खुद को आत्मा समझते हुए एक दो को आत्मा दृष्टि से देखते हुए मन ही मन आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे। कैसे चिंतन करना है मैं कमेंट्री दूंगी। जैसा विचार में देती जाऊं वो ही विचार मन में आप रिवाइज करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, रियलाइज करेंगे और उस अनुभव में स्थित होंगे। अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। जीवन का प्रथम मूल सत्य आज मैंने समझा कि मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं आत्मा अविनाशी चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा, मैं इन आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ, परंतु मैं आँख नहीं, कान नहीं, मुख नहीं हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों की राजा आत्मा, मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, ये मेरा घर नहीं है, मुझ आत्मा का असली घर शांति धाम है, जो इस दुनिया से दूर है। 5 तत्वों से पार है, प्रकृति का 6वां अखंड लाल ज्योति तत्व है, मैं आत्मा उस ब्रह्मलोक की निवासी है। अपने असली निराकार अविनाशी चैतन्य आत्म स्वरूप में मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा। मैं आत्मा सत्य और चैतन्य हूं। अपने स्वधर्म से मैं शांत और शीतल हूं। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूं, मन शांत होने लगता है। अपनी ओरिजिनल नेचर से मैं आत्मा आनंद प्रेम स्वरूप। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन। मैं आत्मा शांत और सत्य। ओम